भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से शिक्षाएं, ये लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है और हमने शुरुआत की थी भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला करने के 8 कारण, और हमने जो पहला कारण भगवान ने ये लीला की, गोवर्धन धारण किया, विस्तृत चर्चा इसकी हमने की है अब तक। फर्स्ट लेसन, देवराज इंद्र का अभिमान दूर करने हेतु। ऑफिशियली ये पहला लेसन संपन्न हो चुका है, तो आज से हम दूसरे लेसन पर जाएंगे, गोवर्धन पर्वत की महिमा दर्शाने हेतु भगवान ने गोवर्धन की लीला की। और गोवर्धन पर्वत की महिमा का बखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त गोपियां, उनके अलावा और अच्छी प्रकार से कौन कर सकता है। तो ये जो प्रसिद्ध श्लोक हमने कई बार लिया है, ये दूसरे लेसन में, दूसरी शिक्षा में हम ये श्लोक पुनः लेंगे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21, इस अध्याय का शीर्षक है गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान, श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य, पानीय सूयव सकंदर कंदमूलै, हंताय मद्रिरबला। यह अद्रि पर्वत अबला, हे सखियों, हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ, यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है, सह साथ गो गणयो गौवें बछड़े तथा ग्वाल बाल के, तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम, यत क्योंकि पानीय पेय जल के साथ सूयवस अत्यंत मुलायम घास, कंदर गुफाएं कंदमूलै तथा खाद्य कंदों के साथ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं, बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। श्री कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य, उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम तथा रस तथा पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवश दुर्वा अर्थात घास को बतलाता है, जिससे अर्ध की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि में एवं दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम करती है। कंदर गुफाओं का सूचक है और कृष्ण बलराम तथा उनके संगी वहां खेलते, बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। भगवान श्री कृष्ण, उनकी एक खूबी है, उनके जो निस्वार्थ भक्त होते हैं उनका गुणगान करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हम ये गोवर्धन लीला की जो दूसरी शिक्षा है कि भगवान ने ये इतनी प्रसिद्ध लीला 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन धारण किया, यहां तक कि इंद्र जो अपने आप को अपमानित मान रहे थे भगवान के द्वारा, और वो केवल कोई साधारण देवता नहीं, देवराज इंद्र जिनको कहा गया है, तो उस दृष्टिकोण से यदि देखें तो भगवान ने देवराज इंद्र का अपमान किया, तिरस्कार। और ये जो दूसरी शिक्षा जिसे हम लिए हैं आज, किस लिए? गोवर्धन की महिमा, उसका बखान करने हेतु। तो क्या है गोवर्धन, कौन है, क्यों भगवान ने गोवर्धन जो कि एक पर्वत के रूप में है देवराज इंद्र के सामने इतनी मान्यता उनको दी? इसी अध्याय के पहले हमने सुना भगवान ने वृंदावन के जो वृक्ष हैं उनको इतनी मान्यता दी कि जो विद्वत ब्राह्मण थे और उनकी पत्नियों ने जो भगवान को अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, तो वहां पर भगवान बलराम जी को, अन्य गोप सखाओं को वृंदावन के वृक्ष दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और इतने संकुचित विचार वाले ये ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण को बृहद हृदय वाला होना चाहिए, ये एक अर्थ है ब्राह्मण का, जो बृहद हृदय वाला हो। तो ऐसे संकुचित विचार वाले ये ब्राह्मण कि ये जो यज्ञेश्वर मैं आया हूं मुझे नहीं दे सकते तो ये किसी और को क्या देंगे। और फिर भगवान पेड़ों को दिखाते हुए कहते हैं कि इन विद्वत ब्राह्मणों से अच्छे तो ये वृंदावन के वृक्ष हैं, जो निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ दूसरों पर लुटाते रहते हैं। तो भगवान एक ऐसे रेवोल्यूशनरी प्रीचर हैं कि वृक्षों के द्वारा शिक्षाएं दे रहे हैं, पर्वत के द्वारा शिक्षाएं दे रहे हैं। ये अन्य बात है कि भगवान के धाम में वृक्ष हो या पर्वत हो या कोई कंकड़ हो या घास हो या कोई पशु पक्षी, वो सब भगवान के व्यक्तिगत भक्त हैं। तो गोवर्धन प्राकट्य इनका कहां हुआ? हम सबसे पहली शिक्षा गोवर्धन से इनके प्राकट्य की जो कथा है उससे लेंगे। गोलोक वृंदावन धाम, भौम वृंदावन नहीं, गोलोक वृंदावन धाम में गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य। एक दिन श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गईं और श्रीमती राधा रानी ने भगवान से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसकी जरूरत नहीं थी, परंतु क्योंकि श्रीमती राधा रानी को गोवर्धन पर्वत को प्रकट कराना था इसलिए एक बहुत ही अनोखा प्रश्न उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। वो पूछती हैं, हे श्याम सुंदर, क्या आप मेरी सेवाओं से प्रसन्न हो? अब ये प्रश्न अनोखा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, हम लोग को बहुत जरूरत है ये पूछते रहने की। हम यदि नहीं पूछें तो ये अनोखी बात है, परंतु श्रीमती राधा रानी ये प्रश्न पूछ रही हैं कि हे श्याम सुंदर, क्या आप मेरी सेवाओं से प्रसन्न हो? तो अजीब लगा भगवान को ये प्रश्न। अवश्य मैं प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बदले में देने के लिए, सब कुछ ले लिया है तुम्हारे सेवा भाव ने, मुझसे छीन लिया है। तो श्रीमती राधा रानी, यदि आप इतना प्रसन्न है मुझसे तो एक दरख्वास्त है आपसे कि एक ऐसी लीला स्थली बनाइए आप जहां पर न केवल हम दोनों बल्कि जितनी गोपियां हैं अन्य और जितने आपके ग्वाल सखा हैं वो सब एकत्रित आकर आपकी सेवा में लगकर आपको और प्रसन्नता दें। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो राधा रानी जब कुछ मांगती हैं तो किसके लिए मांगेंगी? वो अपने श्याम सुंदर के लिए, और श्याम सुंदर से ज्यादा वो जो श्याम सुंदर को प्रसन्नता दे रहे हैं जो भक्त, उनके लिए श्रीमती राधा रानी हर समय कुछ ना कुछ मांगती रहती। इसलिए उनका जो भाव है उसको कहा गया है महाभाव, कि ऐसा भाव, ऐसे प्रेम का भाव इस संसार में, आध्यात्मिक संसार का जो पराकाष्ठा है उस भाव की, वो बताया गया। इस संसार में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई इस प्रकार का प्रेम किसी से कर सकता है। शिक्षाष्टकम में राधा रानी का जो भाव बताया गया है अंतिम श्लोक में, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम, श्रीमती राधा रानी कह रही हैं, वो श्लोक विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का उद्गार है, अंतिम श्लोक। उसमें वो कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, यदि कोई अन्य गोपी वो आपको यदि मुझसे ज्यादा प्रसन्नता दे रही है तो मैं उसकी सेविका बनने के लिए तैयार हूं। अब देखिए इस संसार का प्रेम क्या है, तुम मुझको यदि न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये इस भौतिक संसार का तथाकथित प्रेम, कोई बात नहीं मुझको अगर नहीं चाहोगी, लेकिन किसी और को तो मुश्किल, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। राधा रानी का यह भाव नहीं है, यदि कोई और गोपी मुझसे ज्यादा प्रसन्नता तुमको दे रही है तो मैं उसकी सेविका बनने के लिए तैयार हूं। तो श्रीमती राधा रानी जो भगवान से अनुरोध कर रही हैं कि एक ऐसी लीला स्थली आप बनाइए, और श्रीमती राधा रानी वो उनकी दरख्वास्त पूरा करने से पहले भगवान के हृदय से एक बूंद जल और एक अग्नि की चिंगारी निकली भगवान के हृदय से, और अग्नि और जल के उस कॉम्बिनेशन से एक कंकर पैदा हुआ। यह है गोवर्धन पर्वत का जन्म। कहां से? स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण के हृदय से जल की बूंद और एक चिंगारी का मिश्रण परिणित हुआ एक कंकर के रूप में, और देखते ही देखते दोनों राधा श्याम उनके सामने वो कंकर जो है एक पत्थर में परिणित हुआ, कंकर से पत्थर बना, पत्थर से एक छोटा सा नन्हा सा पर्वत, हिलॉक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और देखते देखते वो एक विशाल पर्वत के रूप में परिणित हो गया, और गोलोक वृंदावन में जिस क्षण गोवर्धन पर्वत का प्राकट्य हुआ, उस कंकर के रूप से गोलोक वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की वृद्धि होती रही है। जैसे कि इस संसार में जब भगवान श्री कृष्ण चले गए 5000 वर्ष पूर्व, तो गोवर्धन घटते जा रहा है, तो कटौती हो रही है इस संसार में गोवर्धन की, क्योंकि भगवान के विरह में गोलोक वृंदावन में गोवर्धन, उनका नाम क्या है? वर्धन। गोवर्धन में वर्धन ये शब्द है, हर समय वृद्धि उनमें होती रहती है। तो हम ये जो उनका गुण है, जो प्रकट होते ही उन्होंने दिखाया, कौन सा गुण? वर्धन होने का गुण, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। इंग्लिश में जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव डिवोटी, अगर गोवर्धन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें क्या होगा उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन? प्रोग्रेसिव डिवोटी गोवर्धन। तो उनके नाम का यदि हम विश्लेषण देखें तो गो का अर्थ हम अक्सर सुने हैं, गो का अर्थ इंद्रियां, गो का अर्थ गौएं, और वर्धन का अर्थ है वृद्धि, समथिंग विच कीप्स इंक्रीजिंग। तो गोवर्धन का अर्थ है जिनकी इंद्रियां हर समय भगवान के सेवा के लिए बढ़ती रहती है, उसमें वृद्धि होती रहती है उनके इंद्रियों में। अर्थात ऐसा नहीं कि इंद्रियां उनकी क्वांटिटी वाइज बढ़ती रहती हैं, क्वालिटी उसके अंदर जो क्षमता है भगवान की सेवा करने की, वो क्षमता उनके अंदर बढ़ती रहती है। और गोवर्धन का अर्थ ये भी है कि जो भगवान के इंद्रियों के सुख का वर्धन करे, वन हु इंक्रीजेस द सेंस प्लेजर ऑफ कृष्णा इज गोवर्धन। तो ये पहली शिक्षा गोवर्धन से हम सीखते हैं कि हमें यदि हम, वो तो हरिदास वर्य हैं, हरि के दासों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और हमारी स्थिति है कि हम हरिदास बनने का प्रयास कर रहे हैं या हम हरिदास के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक रहेगा? नहीं, हरिदास के दास अनुदास 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 नित्यकाल तक वो बनने का प्रयास कर रहे। तो ये जो उदाहरण अपना प्रस्तुत कर रहे हैं श्री गिरिराज गोवर्धन, हाउ टू बिकम अ प्रोग्रेसिव डिवोटी। डिवोटी मींस प्रोग्रेसिव। इफ देयर इज नो प्रोग्रेस, विच मींस वी आर नॉट अ डिवोटी। सिंपल इक्वेशन है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। प्रगति अगर नहीं हो रही है भक्ति में, मतलब भक्ति नहीं हो रही है। भक्ति मतलब प्रगति। भक्ति और प्रगति सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स, कोई अंतर नहीं दोनों में। तो हम देखेंगे कि इस भौतिक संसार में हम लोग को भक्ति करने के लिए कहा गया है, कहना पड़ता है हमको। आध्यात्मिक संसार में खुद से करते हैं सब लोग, हमको कहना पड़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनगिनत बार। और कहने के बावजूद हमसे ठीक प्रकार से भक्ति नहीं हो पाती। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पिरिचुअल और मटेरियल, ये दोनों को कैसे डिफाइन किया गया है। हमने जैसे अभी भक्ति को, स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया, तो मटेरियलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है वो भी हमको समझना है, क्योंकि हमारी स्थिति क्या है। हम शुद्ध आत्मा इस भौतिक शरीर के अंदर फंसे हुए हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि इस भौतिक शरीर के अंदर, जो कि इस भौतिक संसार के अंदर है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं किस प्रकार से। जैसे एक तोते को केज में बंद कर दिया है, पिंजड़े में बंद कर दिया एक तोते को, और तोते को कहा जा रहा है उड़ो। पंख है उसके पास, उड़ने की शक्ति भी है, पिंजड़े के अंदर होने की वजह से बेचारा कहां तक, कितना उड़ पाएगा वो। कभी कभी आपने देखा होगा पिंजड़े के अंदर वो तोते यहां वहां अपना पंख थोड़ा सा खोल के इधर से उधर, उड़ना नहीं कहेंगे उसको, कूद जाते हैं यहां से, जो भी कुछ बनाया जाता वहां से यहां कूद जाते, चोंच से केवल वो काटते रहते हैं उस पिंजड़े को। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम काट भी नहीं रहे, कम से कम वो तोता काट काट के बता रहा है कि मुझे बाहर निकलना है। यदि दरवाजा खोल भी दिया जाए तो हम वापस चोंच से बंद कर लेते। बाहर कहां निकाल रहे हो? तो शुद्ध आत्मा सच्चित आनंद, असत अचित निरानंद, इस शरीर के अंदर फंसा हुआ जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, वो उस तोते के समान है जो पिंजड़े के अंदर उड़ने का प्रयास कर रहा है। सो स्पिरिचुअल लाइफ मींस प्रोग्रेशन, बढ़ोतरी। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है बढ़ोतरी। मटीरियल लाइफ मींस कटौती, डिग्रेशन, हर समय डिमोशन। एक है प्रमोशन, दूसरा होता है डिमोशन। तो हम जूझते हैं, साधना भक्ति या साधक, स्ट्रगलिंग डिवोटी जिसको हम लोग अपने आप को कहते हैं, क्या है हम लोग कि प्रोग्रेशन और डिग्रेशन की जद्दोजहद में हम अटके हुए हैं दोनों। तो सबसे पहले हम जो ये भौतिक संसार है या मटेरियल लाइफ का जो डिग्रेशन है, अब ये प्रश्न किसको होगा कि भाई इतनी प्रगति जो मनुष्य समाज ने अब तक कर ली है, आप यहाँ पर सीधा स्क्रीन पे दिखा रहे हो, बोल रहे हो माइक के ऊपर, मटेरियल लाइफ पूरा डिग्रेसिव है, तो ये जो आप यूज कर रहे हो ये सब दिखाने के लिए, ये लैपटॉप और टेक्नोलॉजी, ये सब प्रोग्रेस नहीं है क्या? कहाँ से कहाँ, पहले हम आदि मानव थे, गुफाओं में रहने वाले जंगली, अब देखो गुफाओं के बाहर आ गए। लेकिन जंगलीपन नहीं गया। अलग प्रकार से तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई जो इतनी प्रगति मनुष्य ने अब तक की है उसके बारे में क्या कहोगे आप? जैसे हम लोग रोज हमारे मंदिर के अंदर ही जो फाउंटेन है इसको देखते हैं, है ना? जब फाउंटेन चालू होता है कितना मूवमेंट इसके अंदर दिखता है हमको, यहां से पानी आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, पीछे से आ रहा है, बीच से आ रहा है, सब जगह से मूवमेंट ही मूवमेंट। पहली दफा जब कोई फाउंटेन चालू होता है तो पहली दफा कोई आता है मंदिर में हमारे, तो उसको समझ में नहीं आता ये अचानक कौन सा बटन दब गया, कहां से डप करके आए, छोटा सा धमाका जैसा हुआ है, और फिर अचानक पीछे से इतना पानी, बाप रे, डर जाते हैं कहीं पूरा टेंपल हॉल तो गीला नहीं हो जाए, है ना? इतना पानी पीछे से आ रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, दो दो पंप लगा रखे हैं पानी फेंकने के लिए, तो हमको लगता है कि कितना पानी पूरे टेंपल हॉल को मतलब बाढ़ दिला देगा यहां पर ये। लेकिन कुछ नहीं होता है, वो अंदर ही रहता है पानी, वही घूम रहा है वही पानी। आपको लगता होगा इतना पानी, कितना पानी भरना पड़ता होगा उसको कंटिन्यूअसली वो फ्लो लाने के लिए, नहीं, वो उसका वो जो रिक्वायर्ड टैंक है उतना ही पानी वो लेता है और उसी में फेर बदल चलता रहता है उसका, है ना? फाउंटेन का मैकेनिज्म क्या है, किसी भी फाउंटेन का मैकेनिज्म क्या है, वही पानी को वो पंप यहां से फेंकता है वापस से नीचे, उसको रिसाइकल करके वापस ऊपर से फेंकता है, वही पानी को घुमा फिरा रहा है, घुमा फिरा रहा है, घुमा फिरा। हमको लगता है कितना पानी है। यही है प्रगति संसार की। वही घुमा फिरा के हम वही काम बार बार कर रहे हैं। पहले हम कुत्ते बिल्ली की तरह आहार निद्रा भय मैथुन करते थे, अब एकदम सोफेस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। वही है घुमा फिरा के उसी चक्र में। 84 लाख योनियां वो सब हैं क्या? सब 84 लाख योनियां वही कर रही हैं, जैसे राधानाथ महाराज अपने एक प्रवचन में कह रहे थे, गीता नगरी में वो थे, वहां पर उन्होंने जुगनुओं को देखा। जुगनू, जुगनू हमने देखे होंगे, कैसे वो चमचमाते रहते हैं, कितने सुंदर दिखते हैं। तो महाराज वो जुगनुओं को देख रहे थे और जुगनुओं को देखकर महाराज इतनी प्रशंसा कर रहे थे उन जुगनुओं की। तो महाराज के गुरु बंधु उन्होंने कहा, आप जानते हैं जुगनू ऐसे क्यों इतने चमकते रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको मैथुन सुख चाहिए, उसके लिए वो इंडिकेशन दे रहे हैं। वो मेल फीमेल को इंडिकेशन दे रहा है, मुझे मैथुन सुख चाहिए। तो महाराज कहे, ये क्यों बताया आपने मुझे? अब मैं जब भी जुगनू को देखूंगा। तो उन्होंने कहा, ये सत्य बात है संसार की। कोई कोयल है, बहुत अच्छी तरीके से वो आवाज दे रही है, मेंढक अपने तरीके से टर्टर करते रहते हैं, कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, मेंढक टर्टर कर रहे हैं, जुगनू चमचमा रहे हैं। काम एक ही है, क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च। और हमको लग रहा होगा कि नहीं नहीं, हम टर्टर नहीं करते, मैं गुटरगू नहीं करता, मैं व्हाट्सएप करता हूं। तो हम चाहे व्हाट्सएप करें या मेंढक टर्टर करे, फाउंटेन का पानी वही है। घुमा फिरा के वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो इसलिए आपने पता नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कैलिडियोस्कोप देखा है? जानते हैं? कौन जानता है कैलिडियोस्कोप क्या होता है? शर्मा क्यों रहे हैं? अच्छी बात। हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? नहीं पता। चूड़ियों, चूड़ियों का रहता है ना कांच, वो उसके अंदर आप देखो, घुमाते रहो, हर समय अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं, उसको कैलिडियोस्कोप कहते हैं। तो ये कैलिडियोस्कोप एक ऐसा एक आविष्कार किया गया है कि जिसके अंदर जितनी बार आप अंदर देखो उसके, आपको हर समय अलग पैटर्न दिखेगा। और घुमा फिरा के कुछ ही चंद वो कांच के टुकड़े हैं उसके अंदर, लेकिन वो कुछ कांच के टुकड़े उसके पैटर्न्स हर समय अलग 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 रहते हैं। तो वैसे ही तीन गुण हैं, और हम जो तीन गुणों से बने हुए हैं, हमारे जो तत्व हैं 8 तत्वों से, बाकी पूरी सृष्टि 24 तत्वों से पूरा है, उसका ही फेर बदल है उसी के अंदर। वो कैलिडियोस्कोप की तरह, कभी कोई जुगनू के रूप में, कभी कोई मेंढक के रूप में, कभी कोई मनुष्य के रूप में, कभी कोई किसके रूप में, देवता के रूप में, लेकिन है वही फाउंटेन का पानी, घूम रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि मटीरियल लाइफ में ये जो डिग्रेशन बताया गया है, ये क्यों कहा गया है कि शुरुआत अगर हम अपने शरीर से करें, ये हमारा भौतिक शरीर जब पैदा हुआ, पैदा होते ही कौन सी यात्रा पर निकल गया? थोड़ा मुश्किल है ये सुनना कहना, पैदा होते ही हम लोग कौन सी यात्रा के लिए निकल गए? जैसे होता ना, मैं ये यात्रा के लिए निकला हूं, मैं वो जर्नी के लिए निकला हूं। हम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, कोई 25 साल पहले पैदा हुआ होगा, कोई 40 साल यहां पहले पैदा होगा, कोई 50 साल पहले पैदा हो, कोई कल पैदा हुआ होगा। पैदा होते ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है स्मशान भूमि, और वो मैटरनिटी रूम से स्मशान भूमि के बीच में हम अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। तो एक्चुअली हम सब इस भौतिक संसार में पैदा होते ही कौन सी यात्रा को निकलते हैं? शव यात्रा। सुना है ना, शव यात्रा सुना है? हमको लगता होगा केवल वो जो मुर्दा जिसका जनाजा निकलता है केवल वही शव यात्रा है। नहीं, श्रीमद् भागवत में कहा गया है बहुत ही सुंदर श्लोक में, नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतोपि सह। हम लोग जो कर्म करते हैं मनुष्य जीवन में, नेहयत कर्म धर्माय, वो कर्म यदि धर्म की ओर हमें नहीं ले जा रहे तो वो कर्म कर्म नहीं। तो धर्म किस लिए? नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। वो धर्म जो हमारे अंदर वैराग्य नहीं पैदा करे इस संसार के प्रति, वो धर्म नहीं। और इसमें ये कहा गया है कि वैराग्य किस लिए? ताकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग या आकर्षण उत्पन्न हो। यदि यह सब कुछ नहीं हो रहा तो एक उदाहरण दिया गया है श्लोक में कि वो व्यक्ति जिसके कर्म धर्म की ओर नहीं ले जा रहे, उसे वो धर्म जो उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं कर रहा, वो वैराग्य जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति राग उत्पन्न नहीं कर रहा, उसका जीवन मृतोपी सह, वो जिंदा मुर्दा है, मुर्दे चल रहे हैं। कल्पना कीजिए, चलता फिरता मुर्दा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें एम्फेसिस दिया गया है ये श्लोक के एंड में, चलता फिरता मुर्दा। मुर्दा वैसे ही भया हुआ होता है, यदि मुर्दा चलने फिरने लग जाए तो कितना भयानक और बन जाएगा वो। तो इसलिए कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में अधिकांश चलते फिरते मुर्दे दिखते हैं, क्योंकि कर्म कोई धर्म के प्रति नहीं कर रहा, धर्म यदि कोई पालन भी थोड़ा बहुत कर रहा है तो कोई वैराग्य उसके अंदर नहीं है, कोई यदि वैराग्य भी थोड़ा बहुत ले लिया तो भगवान श्री कृष्ण को कोई जानना नहीं चाहता, कोई आकर्षण उनके प्रति नहीं। जीवन अपि मृतोपि सह। तो यदि हम हमारे भौतिक शरीरों को देखें तो हां, एक समय आता है जब हमको लगता है कि हाँ, ये शरीर जो है ये इसके अंदर वृद्धि हो रही है। ऐसा लगता है वृद्धि हो रही है शरीर के अंदर। जैसे छोटे बच्चे हम सब जब थे, और जो भी छोटे बच्चों को हम देखते हैं, उनके अंदर हमको लगता है कि कितना लाइफ है उनके अंदर। वो सही बात है, वो आत्मा के वजह से, वो शरीर ये शरीर सड़ नहीं रहा हमारा, क्योंकि आत्मा अंदर है, इसलिए बाय द वे। और सोचिए उसके बावजूद रोज सुबह गंदगी निकलती है केवल इस शरीर से। हमारे शरीरों को यदि हम रोज साफ नहीं करके रखें तो हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान भक्ति के नियम इतने दिए हैं कि ये जो सड़ा हुआ हमारा शरीर है ना, इसको यहीं डिस्पोज करके आना। हमारे घरों में यदि हम देखें, अधिकांश जो उपकरण बाकी सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, गंदगी को दूर करने के लिए होते हैं। साबुन, मंजन, तेल, ये वो, कपड़े धोने का साबुन, ये शरीर को साफ करने का साबुन, यहाँ पे दांतों को घिसो, कानों को साफ करो, आंखों में से मैल निकलता रहता है, घर गंदा होता रहता है, कौन, हम लोग ही करते रहते हैं। जो रह रहे हैं उनके वजह से तो घर गंदा हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर से गंदगी निकल रही है तो घर भी गंदा हो रहा है। फिर हम कहते हैं घर गंदा हो रहा है, घर कहेगा तुम्हारे वजह से गंदा हो रहा हूं। तो ये हमारा शरीर, हमको लगता है, देखिए इल्यूजन कितना बड़ा है कि हमको, जब हम जवानी में होते हैं तो हमको लगता है कि बस ये जोश है जवानी मेरी निरंतर रहेगी। तो एक उदाहरण से हमारा जो शरीर है उसका डिग्रेशन किस प्रकार से होता है, एक उदाहरण से हम नासिक वालों को अच्छे से समझ में आएगा। हम जब पैदा होते हैं तो अंगूर के समान होते हैं, अब समझ में आ रहा है? हम जब पैदा होते हैं तो अंगूर के समान होते हैं। अब देखिए कौन सा अंगूर, एक्सपोर्ट क्वालिटी अंगूर, बड़े बड़े होते हैं वो अंगूर, एकदम टाइट, हा? टाइट स्किन। तो इस भौतिक संसार में सुंदरता किसको कहते हैं लोग, टाइट स्किन। टाइट स्किन मतलब सुंदर अंगूर, हाँ, अभी एकदम सीजन जब शुरू होता है तो अंगूर जब निकलते हैं तो एकदम दिखने में ग्रीन और अच्छे दिखते हैं, टाइट एकदम, उसको हाथ में भी लो तो लगता है कि हाँ कितना रस अंदर होगा इसके, हाँ, ऐसे हाथ में लेते ही ललचाता है मन। तो वो है तथाकथित हमारी वृद्धि शरीर की, वही अंगूर आगे चलकर बनता क्या है, कैसा दिखता है वो किशमिश बनने के बाद, उसको देखो पूरा सिकुड़ गया है, पूरा उसके अंदर से उसकी जो जान है वो किसने ना सक कर लिया, ऐसे एकदम सिकुड़ गया है, झुर्रियां भी दिखती है ना उसके ऊपर, अंगूर पर कोई झुर्रियां नहीं, किशमिश केवल झुर्रियों से भरा हुआ। आप लोग कहोगे लेकिन वो ज्यादा महंगा है। तो ये इल्यूजन है इस भौतिक संसार का कि जो सूख गया है उसके अंदर से सारा रस निकल गया है वो ज्यादा महंगा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो भौतिक संसार, ये जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, भौतिक हमारा शरीर, अवर मटीरियल बॉडीज, व्हाट इज द प्रोग्रेशन ऑफ आवर मटीरियल बॉडी, जस्ट लाइक अ ग्रेप प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स अ रेजिन, एक अंगूर किशमिश की ओर जो जा रहा है, ये है। और इसके दौरान जैसे हमने कहा मैटरनिटी रूम से लेके स्मशान भूमि, गंतव्य स्थान हमारा कहां तक, स्मशान भूमि, शुरुआत कहां से हुई हमारी यात्रा की, यहां पर से भी पैदा हुए, और उसके बीच में हमें लगता है कि हाँ भाई मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या क्या नहीं कर रहा हूं मैं, क्या क्या नहीं मैंने हासिल किया, कुछ नहीं लेके आया था मैं। हाँ तुम लोग कहते हो ना तुम्हारे प्रवचन में, खाली हाथ आए खाली हाथ जाए, खाली हाथ आया देखो आज हाथ में क्या क्या है। अपने बलबूते पर खड़ा किया है। लेकिन जो माया देवी के थपेड़े हमें पड़ते रहते हैं हर एक न्यूज चैनल में, मैक्सिमम न्यूज क्या है, कोई प्लेन वहां क्रैश हो गया, इतने लोग यहां मर गए, ये इतने बीमारी से मर रहे हैं, कोई अगर किसी और तरीके से नहीं मर रहा तो एक दूसरे को मार रहे हैं, भाई तू अगर तू मर क्यों नहीं रहा है? मैं मारूंगा तेरे को। तो अगर प्रकृति किसी को नहीं मार रहे, इसलिए प्रभुपाद एक अच्छा उदाहरण देते थे कि इस भौतिक संसार में भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है किसी को मारने के लिए। लोग पूछते नहीं क्यों नहीं आते भगवान, इतना सब कुछ अधर्म हो रहा है, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे किसी क्लास में यदि दो विद्यार्थी बदमाश हैं तो जो बुद्धिमान शिक्षक है वो क्या करता है, वो ज्यादा परिश्रम नहीं करता उनको दंड देने के लिए, वो कहता है दोनों इधर आओ, दोनों बदमाशों को बुलाता है और दोनों बदमाशों को कहता है एक दूसरे के कान पकड़ो, ऊपर नीचे बैठो अभी। तो एक दूसरे के वो कान पकड़ते हैं, तो अब ये जितना खींचेगा वो कहता तू अगर इतना खींचता मैं दुगना खींचूंगा। तो दोनों ये नहीं समझ रहे हैं कि मूर्ख बनाया जा रहा है हम दोनों को, अगर हम दोनों ढीला छोड़ दें तो दोनों सुख से रहेंगे। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि संसार में लोगों को भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है, भगवान माया देवी को कह देते हैं शिक्षक के रूप में, जाओ बदमाशों को कहो एक दूसरे के कान पकड़े। तो हाँ मैं भारत का हूं तो पाकिस्तान का है, तेरे मैं कान पकड़ूंगा तू मेरे कान पकड़ ले खींच। अब एक और डेफिनेशन इस संसार में प्रगति का क्या है, वैरायटी, वैरायटी, वैरायटी में वो सोचते हैं कि प्रगति हो रही है। जितना हम वैरायटी पैदा कर दें, अक्सर हम उदाहरण देते हैं कि आप देखो कि एक ही वस्तु उसको बहुत वैरायटी फुल तरीके से यदि प्रस्तुत किया जाए तो लोगों को लगता है कि बहुत एडवांसमेंट हो रहा है। जैसे माया देवी किसी को थप्पड़ मार रही है और पीछे से लात मार रही है, वैरायटी है ना। तो जो मूर्ख बद्ध जीव है, श्री राधा मदन गोपाल जी की, तो जो मूर्ख बद्ध जीव है वो सोचता है कि थप्पड़ मुझे गाल पर पड़ा और लात पिछवाड़े पर, क्या वैरायटी है। प्रोग्रेस, उसको वो प्रोग्रेस मानता कि क्या वैरायटी है। सो मटीरियल बॉडीज देशो अंगम गलितम पलितम मुंडम दशर विहीनम जातम तुंडम, शंकराचार्य ने कह दी सब कुछ गलने लगता है शरीर का। अंगूर से किशमिश, ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट्स जो हमने आविष्कार कर हमारे इंद्रिय भोग के लिए सारे इकट्ठा कर रखे हैं, वो सब कुछ, जितने जन जेवर मकान सब कुछ, वो सब कुछ यहां पर वो धूली बनने वाले हैं। कितनी भी आलीशान कार हम ले लें, कार भंगार बनने वाली है एक नहीं, है ना। कई बार आप किसी गैराज में देखते हो कि एकदम वो जंग लगी हुई कार ऐसी पड़ी होती है, टायर उसके फटे हुए, जंग लगी हुई, लेकिन साइन है मर्सिडीज का, लोगो है मर्सिडीज का, उस पर भी जंग चढ़ा है, सब प्रकार कि उसके अंदर कीड़े यहां वहां। लेकिन एक जमाने में जब वो शोरूम से निकली थी तब पागल थे लोग उसके पीछे। तो वैसे हमारा शरीर भी है, और शरीर से हम पैदा करते हैं अन्य शरीर या ऑब्जेक्ट्स, वो हमसे ही पैदा हुए हैं। यदि हम, एक उदाहरण दिया गया है भागवत में कि जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, दाल चावल ले लो, दाल चावल को आप 3 दिन रख दो ऐसे ही, क्या होता है उसका, सड़ जाएगा। तो वो जो 3 दिन बाद सड़ने वाला है, वो दाल चावल हम खाकर हम सोचते हैं कि मैं नहीं सड़ूंगा, उल्टा ताजा दाल चावल को हमारा शरीर जब स्पर्श करता है तो सड़ा देता है, है ना। क्या होता है उस दाल चावल का दूसरे दिन, ऐसे ही अगर रख दिया जाए तो कम से कम 1 दिन तो टिकेगा, हमारे शरीर के संपर्क में आने के बाद तो हम धज्जियां उड़ा देते हैं उसके। वो राधानाथ महाराज वो जो कहते थे ना, एक व्यक्ति मल विसर्जन करने गया और देखा, छी 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 छी, अपने मल को देखकर छी 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 कर रहा है, तो मल भी बोलने लगा, उसको भी गुस्सा आ गया, सुबह सुबह मेरे को गाली दे रहा है, अभी तक बौनी नहीं हुई मेरी, कोई सुअर भी नहीं आया, तो गाली दे रहा है मुझे, तो ये छी 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 कर रहा है। और मल कहता है, कल रात को मैं गर्मा गर्म समोसा था, देख तेरे संगत में मेरे क्या हाल हुआ है। मटीरियल बॉडीज, मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, मटीरियल प्लेसेस, बड़े बड़े साम्राज्य थे, बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में परिवर्तित हो गई। सो डिग्रेशन इन मटीरियल प्लेसेस, देन मटीरियल पोजिशंस। अब कोई राष्ट्रपति था किसी देश का 10 साल पहले, कौन पूछता है उसको। कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार था, उसका कोई पद था, पोजीशन था, लेकिन अब कौन पूछता है, कोई याद भी नहीं करते। हिस्ट्री बुक के अंदर उनके नाम दर्ज हैं कि ये इस सदी में पैदा हुआ और इस सदी में मर गया बस। और जो विद्यार्थी वो कोसते रहते हैं, अरे क्यों इतना तू जिया था, मेरे को याद करना पड़ रहा है। अब उसके जमाने में लोग उसका सत्कार, उसकी पूजा सब कुछ किया करते थे, आगे चलकर 100 साल बाद विद्यार्थी कोसते हैं कि अरे भाई याद करना पड़ रहा है, ये डेट अगर मैं नहीं एग्जाम में लिखूं तो फेल हो जाऊंगा। तो है क्या ये सारे जो पोजीशंस हैं, ये है क्या, केवल डेट्स रह जाते हैं और वो भी चले जाते हैं। जैसे मुझे याद है बहुत साल पहले मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आया बंबई, तो उसने जब मुझे देखा, ये क्या हाल बना लिया तुम तेरा, ये क्या किया तूने, तो सुना था उसने कि मेरा ये हाल हो गया है, सुना था उसने, लेकिन जब उसने आंखों देखा हाल, जिसको कहते हैं ना, सर मुंडवाया हुआ, क्या है ये पहन रखा है धोती, तो मैंने कहा चलो प्रोग्राम में चलते हैं, प्रोग्राम अटेंड कर, वहां प्रसाद खाएगा ना, सारे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे। तो ट्रेन में फिर वापसी में वो मेरे को प्रीच करने लगा। पहले तो उसने मेरा लेक्चर सुना, फिर वापसी में ट्रेन में वो मुझे लेक्चर दे रहा था। कहता है तू एक एयरफोर्स का ऑफिसर था, याद है क्या कि याददाश्त चली गई तेरी, एक एयरफोर्स का ऑफिसर, क्या रुबाब था तेरा, क्या कहते हैं उसको, रुबाब, क्या रुतबा, क्या रुबाब था, क्या जुल्फें थी, तो इस प्रकार से वो, और तेरी उम्र भी क्या है, ये सब कुछ तू ये बाबा बाबा बन गया है, क्या ये उम्र है तेरी ये सब करने की। तो बता रहा था कि सफलता किसको कहते हैं, मुझे देख, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट तक पहुंचने वाला हूं बस कुछ और 5-6 साल में, जिस कंपनी में वो था। अब आपने देखा होगा अपने इंडियन ट्रेन्स के अंदर ये जो भिखारी घूमते हैं, गले में हारमोनियम बांधे हुए, हारमोनियम के आगे वो कटोरा उनका बांधा हुआ रहता है। और आपने अगर सुना होगा ये भिखारी ट्रेन के अंदर जो गाने गाते हैं ना, एकदम मार्मिक गाने गाते हैं, फिलोसॉफिकल गाने गाते हैं। और मतलब अंदर से वो किसी के अंदर से वो झंझोड़ दे उसको और वो निकाल के दे दे भाई, असलियत बताते हो जिंदगी की असलियत। तो ये कहे जा रहा था, मेरे बगल में बैठा ये कहे जा रहा था, ये उसका जो भी वो प्रीचिंग चालू था मेरे ऊपर ब्रेन वॉशिंग, तभी ये हारमोनियम बजाते हुए ये आया भिखारी। और एक तो इनका एम्पलीफिकेशन आवाज का इतना होता है कि और कुछ सुनाई नहीं देता है, बिना माइक के जोर से गा सकते हैं, ट्रेन की आवाज को भी पीछे कर देते हैं लोग। अब ये वो हम लोग जहां बैठे हुए थे, इसके सामने जो मेरा दोस्त, इसके सामने हारमोनियम लेके वो जोर से बजाते हुए गा रहा है, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। अब ये इसकी बोलती बंद हो गई और ये उसी को देखते हुए, कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। मौत तुझको आनी है, धोखा ये जवानी है, वो जवानी की बातें कर रहा था ना, मौत तुझको आनी है, धोखा ये जवानी है, कब्र है तेरी मंजिल, बाकी सारी बाराती हैं। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। डिग्रेशन, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, चाहे सूरज संसार में कितना भी ऊपर चढ़ता जाए, जाके ढलने वाला है वो। तो चाहे कितने भी शानो शौकत हो हमारी, रुतबा हो, रुबाब हो, जुल्फें, जो कह रहा था ना, इसे हम बता रहे थे, होता क्या है कई बार, हमारी जुल्फें होंगी एक जमाने में, कुछ समय बाद होता क्या है, हेलीपैड बनता है पहले। छोटा सा हेलीपैड बनता है, ज्यादा दिखाई नहीं देता है वो, फिर वो हेलीपैड का रनवे बनता है। और फिर पूरा टारमैक। तो ये है भौतिक संसार, हमारा शरीर इस भौतिक संसार की ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, पोजीशंस और फाइनली रिलेशनशिप। चाहे हम कितना भी कस्मे वादे यहां वहां के दे दें, ले लें, इस संसार अगर भौतिक स्तर पर रिलेशनशिप है, हाँ आध्यात्मिक स्तर के रिलेशनशिप वो हर समय बरकरार रहते हैं, परंतु भौतिक स्तर पर, भौतिक स्तर के रिलेशनशिप क्या है कि जब कोई संबंध स्थापित करता है केवल शारीरिक स्तर पर, तो उसमें हर समय आप देखोगे कि ग्राफ नीचे जाता है शारीरिक, क्योंकि शरीर नीचे जा रहा है। अरे जब शरीर उसका ग्राफ नीचे जा रहा है तो शारीरिक स्तर पर यदि कोई संबंध स्थापित कर रहा है तो वो संबंध भी उसी ग्राफ की तरह नीचे जाएगा। एक बूढ़े दंपति थे, तो जो वो बूढ़े पति वो अपनी पत्नी को उस उम्र में भी, अपनी वृद्धावस्था में भी अपनी पत्नी को जान, स्वीटहार्ट, हनी, दिलरुबा ये सब बुलाते थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इस उम्र में भी इतने रोमांटिक हो? तो इस बूढ़े पति ने कहा, आपको मैं एक असलियत बताऊं, मैं अपनी बीवी का नाम 10 साल पहले भूल चुका हूं। अब पूछने से डर लगता है इसलिए मैं इसको स्वीटहार्ट यही बुलाता रहता हूं। तो भौतिक स्तर पर जो संबंध है वो दिखते होंगे कि बहुत रोमांटिक लग रहा है वो। तो हाल ही में एक, मैं यूके में प्रेजेंटेशन दे रहा था, वहां पर मैंने कहा ये 10 कार्डिनल सिंस ऑफ कलयुग, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पाश्चात्य देश में वहां पर वो जो क्रिश्चियन रिलीजन में उनके कार्डिनल सिंस होते हैं कि भयावह पाप कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द 10 कार्डिनल सिंस ऑफ कलयुग व्हिच इज मेकिंग दिस डिग्रेशन सो फास्ट। द फर्स्ट कार्डिनल सिन ऑफ कलयुग, प्लेजर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Everyone wants pleasure, but they don't want the responsibility after the pleasure. According to our scriptures, pleasure is something which we are made of. Anandamayo bhyasat. But along with that, we have to fulfill the responsibility of this human form of life who can enjoy pleasure at a very high level. But Kaliyuga is famous for, they want pleasure but nobody wants to take the responsibility. This is the first cardinal sin. The second, wealth without work. Sab paisa chahte hain, daulat chahte hain, kaam karna koi nahi chahta. इसलिए एडवर्टीजमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं ना, घर बैठे बैठे कमाइए। एडवर्ट एडवर्टीजमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं कि कितना कम आप मेहनत करो, कम से कम मेहनत में इतना सा सर्फ एक्सेल डालो, इतने कपड़े धुल जाएंगे, है ना? फिर वो दिखाते हैं कि दूसरा जो डिटर्जेंट है उसको कितना डालना पड़ता है और फिर भी एक ही कमीज धुलती है, फिर वो भी धुलती नहीं, हमारा वाला डालो, इतना सा डालोगे इतने कपड़े धुल जाएंगे और आपको धोने की भी जरूरत नहीं है, बस मशीन से बस मशीन करेगा सब कुछ. सो वेल्थ विदाउट वर्क इज अनदर कार्डिनल सिन ऑफ कलयुग. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. कलयुग में ज्ञान की कमी नहीं है, इतने अलग अलग प्रकार फील्ड्स हैं नॉलेज के. जैसे मैं जब बॉम्बे के यूनिवर्सिटी में प्रीचिंग कर रहा था तो वहां पर एक स्टूडेंट से मैं मिला, पीएचडी कर रहा है पिछले 8 सालों से, उस समय वो कर रहा था. तो मैंने पूछा क्या सब्जेक्ट पर कर रहे हो, तो उसने सब्जेक्ट बताया, जो पानी का बुलबुला होता है उसको कितने ज्यादा समय तक बनाकर रखना, हाउ टू इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ अ वॉटर बबल, इसके ऊपर पीएचडी 8 साल से कर रहा हूं. मैंने बोला क्यों क्यों भाई, क्या होगा? बोला कि ये जो साबुन में जो बुलबुले बनते हैं ना, साबुन लगाते हैं जब नहाते समय, झाग बनता है, तो झाग में वो जो बबल्स बनते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं वो जो उनको झाग बहुत अच्छा लगता है, उनके शरीर से झाग जब ऐसे सरकता हुआ जाता है नहाते समय तो उनको गुदगुली होती है. तो ये बड़ी बड़ी सोप कंपनी, वो हमको, वो केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज ये था, तो हमको वो ग्रांट्स देती हैं कि आप रिसर्च करो और ऐसे केमिकल्स निकालो कि जो हम हमारे साबुनों में डालेंगे और ये लोग जब लगाएंगे अपने शरीरों के ऊपर तो वो गुदगुली वाले जो बुलबुले हैं वो ज़्यादा देर तक टिकेंगे इनके शरीर पे. तो मैंने कहा कि आपको पता है ये हमारा मनुष्य जीवन भी बुलबुले के समान है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, वो तो कभी भी फट सकता है. तो वो सब बातें वो पल्ले नहीं पड़ती, 8 साल से उस पर रिसर्च चल रहा. कई साइंटिस्ट मैंने उनके बारे में सुना कि वो लोग लगे हुए हैं रिसर्च, शोध संस्था होती ना, वो लोग लगे हुए हैं, चमगादड़ होते ना, चमगादड़ बैट्स, चमगादड़ जब किसी गुफा से बाहर निकलते हैं तो ये रिसर्च कर रहे हैं कि वो लेफ्ट टर्न लेते हैं कि राइट टर्न लेते हैं, इसके ऊपर उनका स्टडी चालू है 10 साल से. चमगादड़ भी हंसते होंगे कैमरा वमरा लेके बैठे हैं वो लोग, कब चमगादड़ आया, अच्छा ये लेफ्ट टर्न लिया, अच्छा इसके पीछे 50 और लेफ्ट टर्न लिए. तो अब ये हमारा एनालिसिस है कि चमगादड़ जब भी किसी गुफा से बाहर उड़ते हुए आता है तो लेफ्ट टर्न लेता है. वाह 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 वाह, भाई तुम्हारे जीवन की गाड़ी कौन सा टर्न ले रही है? तो ज्ञान की कमी नहीं है, क्या क्या, पानी के बुलबुले, चमगादड़ कौन सा टर्न ले रहा है. एक स्टडी लोग स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि जो बबल गम खाते हैं लोग, तो उसके अंदर का जो वो इलास्टिसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वो फुलाएंगे जब, उसके ऊपर स्टडी चल रही. तो मैं तो आपको कुछ नमूने दे रहा हूं, ये जैसे अतरंगी स्टडियां बहुत चल रही हैं अलग अलग प्रकार के. सो नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अनदर कार्डिनल सिन ऑफ कलयुग. बिजनेस विदाउट एथिक्स। अब आप लोग कहोगे ये कैसे हो सकता है, एथिक्स इन बिजनेस, नैतिकता व्यापार के अंदर, दिवाला निकालना है। तो जब तक दूसरे का दिवाला नहीं निकले तब तक अपनी दिवाली नहीं बनती। इक्वेशन क्या है, दूसरे का दिवाला निकालकर अपनी दिवाली बनाओ। बट दिस इज अ कार्डिनल सिन, बिजनेस विदाउट एथिक्स। साइंस विदाउट गाइडेंस, मार्टिन लूथर ने कहा, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल। गाइडेड मिसाइल्स इन द हैंड्स ऑफ मिसगाइडेड पीपल। तो बच्चों को मोबाइल तो दिया जा रहा है लेकिन गाइडेंस नहीं दी जा रही है कि उसका इस्तेमाल किस प्रकार से होना चाहिए। इसलिए आजकल लोग कहते हैं ना कि घर में मोबाइल बिगड़ गया तो बच्चे का दोष है और घर में बच्चा बिगड़ गया तो मोबाइल का दोष है। लेकिन दोष किसका है, गाइडेंस नहीं दी गया। प्रॉब्लम इज विद दैट। सिक्स्थ, रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट एंड लव। कि आजकल रिश्ते जो हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कि भाई जब कोई संबंध स्थापित कर रहा है, शादी का संबंध स्थापित कर रहा है तो सबसे पहले क्या क्या ढूंढता है, पे पैकेज कितना है, घर कितना बड़ा है, कौन से लोकेशन पर है, रुतबा कितना है इसका, ये वो दिखने में क्या है, ये सब कुछ। प्रैक्टिकली यू पूछ क्या रहा है, रेट क्या है तेरा, रेट क्या है, बस उसके ऊपर। सो बिकॉज रिलेशनशिप्स आर सिंपली बेस्ड ऑन मटीरियल कंसिडरेशंस, देयरफॉर ऑलवेज डिग्रेसिव, डिग्रेसिव। रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस। तो आजकल लोगों को धर्म भी पालन करना है परंतु उसके अंदर आप हमसे कोई कमिटमेंट मत पूछो, कोई वैराग्य नहीं, कोई त्याग नहीं, ऐसा रिलीजन दो कि सब कुछ चलता रहे। इसलिए आजकल आप देखो कि कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे पंथ चालू हो गए हैं, जो आपको इच्छा है करते रहो, उसके साथ आप हमारे मेंबर भी बन जाओ और आपको जो मर्जी वो भी करते रहो, आपको एक स्टैम्प भी मिल जाएगा कि आप स्पिरिचुअल भी कुछ कर रहे हो। तो केवल हम औपचारिकता से कुछ करें और उसके पीछे यदि सब्सटेंस नहीं है तो वो सबसे बहावर रिलीजन हो जाता है। जैसे मैं अभी तिरुपति गया था तो मैंने देखा कितने एक दर्शन, 30 सेकंड के दर्शन के लिए लोग 30-30 घंटे खड़े रहते हैं। और आपको क्या लगता है कि सब तिरुपति बालाजी के दर्शन कर कर इतना कृतार्थ हो जाते हैं कि अपनी सारी थकान भूल जाते हैं? मोस्टली दे वॉन्ट टू यूज तिरुपति बालाजी फॉर देयर मटीरियल प्रोग्रेस। तो बालाजी भी सोचते हैं कि ठीक है कम से कम उस कारण के वजह से तो आ रहा है, चलो ठीक है, तो वो भी बढ़ोतरी करते रहते हैं कि उसके वजह से कम वो मेरा दर्शन तो करेगा और कोई ना कोई जन्म में तो उसको मेरे प्रति आकर्षण होगा। सो कृष्णा ही attracts us through something of this material world initially to make sure that we become attracted to him, not what he gives but to him. एट्थ कार्डिनल सिन, रिचुअल्स विदाउट पर्पस। हालांकि ये एक एक पॉइंट पर हमने काफी चर्चा की थी, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है इसलिए हम संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं आपको। रिचुअल्स विदाउट पर्पस, केवल कर्मकांड कर्मकांड करते रहो करते रहो, बिना उसके उद्देश्य के जाने। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, अब इसके बारे में क्या कहें हम। दैट इफ यू हैव प्रिंसिपल्स देयर इज नो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये नाम सुनते ही कितना नेगेटिव आ जाता ना, लोग कहते हैं ना कि अरे तुम क्या घर में पॉलिटिक्स कर रहे हो। एक्चुअली पॉलिटिक्स का मतलब वो नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना बदनाम हो गया ये नाम पॉलिटिक्स कि उसके साथ अगर प्रिंसिपल्स या नैतिकता मॉरालिटी ये सब वर्ड्स यूज किए जाए तो वो तेल और पानी को मिलाने के समान हो जाता है। फाइनली एंटरटेनमेंट विदाउट एनलाइटनमेंट, द 10th कार्डिनल सिन। सबको मनोरंजन चाहिए, लेकिन मनोरंजन में आप कोई हमको स्ट्रांग कोई फिलोसॉफिकल मैसेज मत दो, उसके लिए हम पैसा बर्बाद नहीं करने कहीं पे, कोई थिएटर में कोई ड्रामा देखने टीवी ऑन कर, नहीं नहीं, हमको ऐसा एंटरटेनमेंट दो कि हमारे बुद्धि की बत्ती बंद हो जाए। क्योंकि ऑफिस में 8 घंटे वो बॉस जो है इतनी बत्ती जला कर रखता है, तो लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि कोई हमको सोच विचार करने की शक्ति नहीं चाहिए उसमें इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए अब अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ का प्रोग्रेशन देखें तो स्पिरिचुअल लाइफ का प्रोग्रेशन शुरू होता है कुछ अपने जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको अगर हम लें, देखो जर्नी ऑफ उपदेशामृत, रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत दिया, फर्स्ट श्लोक उपदेशामृत का क्या है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, कैसे हमें इंद्रिय नियंत्रण करना है उसके ऊपर है। और 11 श्लोक हैं केवल, अंतिम श्लोक में सीधा रूप गोस्वामी हमको राधा कुंड की जो महिमा है वहां तक पहुंचा रहे। तो अगर आप हमारे वैदिक ग्रंथों के अंदर प्रोग्रेशन देखो तो देहात्म बुद्धि से सीधे राधा भाव 11 श्लोकों के अंदर, यह है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ अवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। भगवत गीता शुरुआत है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, और एंड क्या है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो भगवत गीता की जर्नी में आप प्रोग्रेशन देखो। श्रीमद भागवत जो कि इस भौतिक संसार के क्रिएशन, कैसे क्रिएशन होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये सब कुछ बताया गया। और भागवत पूरे श्रीमद भागवत का जो 18,000 श्लोक है उसमें जो लास्ट श्लोक कौन जानता है, बोलिए। नाम संकीर्तनम की एंड हो रहा है कि नाम संकीर्तनम सबसे परम इस कलयुग के अंदर कुछ यदि है तो वो है नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाश है, सारे जितने हमारे पाप है उन सब का विनाश करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम, केवल प्रणाम करने से सर्व दुखानाम, सारे दुख हमारे नाश हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को। तो इसमें हम प्रोग्रेशन देखते हैं। और फिर चैतन्य चरितामृत, जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्य लीलाओं में बताया कैसे न्याय तर्क, और फिर अंत में वो ले गए जहां पर वो गंभीरा में उन्होंने 8 पद लिखे और जिसका अंत हमने उसको उसकी शुरुआत की थी हमारे प्रवचन की, राधा भाव से। तो कैसे चैतन्य चरितामृत की शुरुआत निमाय पंडित, एक न्याय के पंडित, और वो हमको ले जा रहे हैं राधा रानी के महाभाव तक, प्रोग्रेशन चैतन्य चरितामृत का। इसलिए ये एक थोड़ा सा एनालिसिस हमने हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स का किया। महाभारत यदि आप लो, भगवद गीता महाभारत का ही भाग है। महाभारत टीचेस अस हाउ टू लिव, रामायण टीचेस अस हाउ टू लीड एज अ ह्यूमन बीइंग, श्रीमद् भागवतम टीचेस अस हाउ टू लव। अब देखो, हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हम जीते हैं, जीना किस लिए, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए, विच मीन्स हाउ टू लीड। एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ लिविंग एंड लीडिंग इफ देर इज नो लव, दैट इज श्रीमद् भागवतम। और चैतन्य चरितामृत है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट लव, विच इज द टॉप मोस्ट प्रोग्रेशन। तो अगर हमारे स्क्रिप्चर्स का प्रोग्रेशन आप देखो, भगवद गीता या महाभारत हाउ टू लिव, रामायण हाउ टू लीड, श्रीमद् भागवतम हाउ टू लव, चैतन्य चरितामृत हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट लव। हमारे प्रवचन का अंत मैं एक उदाहरण से करना चाहूंगा। हाल ही में अपने केके वाग के प्रोग्राम के लिए मैं जा रहा था, और उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। तो अक्सर मकर संक्रांति के दिन हम लोग, क्या हमारे ख्याल में आता है, एक तो तिलगुड़, वो हम लोग एक दूसरे को दे तो देते हैं। अब भौतिक संसार में वो खिला के बोलना पड़ता है, भैया मीठा बोल अब तू, कम से कम ये खाते खाते तो तेरे को ध्यान में रहेगा कि जबान मीठी कर तेरी। कईयों का सरनेम भी होता है ना गोड़ बोले, तो मकर संक्रांति के दिन एक तो वो तिलगुड़ हो गया और दूसरा क्या हो गया, पतंग। तो इसलिए हमने आज का हमारा जो टॉपिक हमने लिया है, गोवर्धन से जो पहली शिक्षा वृद्धि, तो पतंग हम सब ने उड़ाई होगी या कम से कम उड़ते हुए तो देखी होगी। कितनों ने पतंग उड़ाई है, उड़ाई है ना, कटी भी होगी आप लोगों की पतंग। तो ये हमारा अंतिम डिस्कशन आज के श्रीमद् भागवतम क्लास का, सिक्स लेसन्स फ्रॉम फ्लाइंग अ काइट, कि पतंग से हमारे मनुष्य जीवन में हम क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से हमारी भक्ति कि साधना भक्ति के जीवन में हम क्या शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। तैयार हैं, पतंग उड़ाएं। सबसे पहला लेसन, पतंग किस पदार्थ की बनी होती है? लाइट। जितनी वो लाइट है उतना वो ऊपर उड़ सकती है, क्योंकि उसको हवा ऊपर लेके जाना है, हवा को उसको ऊपर लेके जाना है। तो आप लोहे स्टील इस सब की पतंग नहीं बना पाओ। फर्स्ट लेसन फ्रॉम अ काइट, इफ वी हैव टू फ्लाई हाई इन डिवोशनल सर्विस, वी हैव टू बिकम लाइट वेट। फिजिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, इस्कॉन में उल्टा हो जाता है ना, इस्कॉन में कुछ साल बाद देखने के बाद लगता है प्रगति कर रहा है। मैं हाल ही में एक भक्त से मिला, कुछ एक आठ साल बाद मैं उनको देख रहा था, काफी प्रगति उनकी हो गई थी फिजिकली। तो अपना वो फिजिकल हेल्थ दिखाते हुए कहे, प्रभु जी संडे फीस्ट अटेंडिंग। 8 years. This is the proof. So lightweight refers to the weight of our sinful reactions. बैगेज लेकर जो हम चल रहे हैं, इतने जन्मों का पाप का जो घड़ा है वो ले लेकर जो हम लोग चल रहे हैं, वो हमें हल्का करना है. तो इसलिए जो प्रभुपाद ने हमको ये लाइफस्टाइल दी है, प्योर लाइफस्टाइल, सिंपल लाइफस्टाइल, ये प्योर सिंपल लाइफस्टाइल हमारे पतंग का वेट कम करती है. इसलिए उदाहरण मैं देता हूं, यशोदा मई दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण को पकड़ पा रही हैं, जिनको बड़े बड़े योगी नहीं पकड़ पाते मन की गति पर चलते हुए भी. और वही कृष्ण बड़े हो जाते हैं, काले यवन वो जो राक्षस, वो भगवान को पकड़ नहीं पाता. अब काले यवन वो बहुत शक्तिशाली, 10,000 हाथियों का बल उसके अंदर, वो भगवान को नहीं पकड़ पाया. और माता यशोदा एक ग्वालन थी, वो तो गृहिणी, वो कैसे पकड़ पाई. तो आचार्य कहते हैं क्योंकि काले यवन बाहर से हल्का था, एथलेटिक बॉडी थी उसकी, लेकिन अंदर से पाप के वजह से भारी हो गया था. और यशोदा माई बाहर से भारी शरीर वाली थी, लेकिन कोई पाप नहीं, अनघ यशोदा माई, अनघ, कोई पाप उनके अंदर नहीं, इसलिए यशोदा माई इतनी हल्की हो चुकी थी भगवान को पकड़ पाए. सो द फर्स्ट लेसन फ्रॉम अ काइट इज टू बिकम लाइट इफ यू वॉन्ट टू फ्लाई हाई. सेकेंड लेसन, यदि हवा ही नहीं है तो आप कितना भी वो हिला दो मांजे को, पतंग को बांध बूंद के, कुछ नहीं होने वाला. हवा चाहिए, फेवरेबल विंड्स. सो फेवरेबल विंड्स रेफर टू फेवरेबल एसोसिएशन. इसलिए जब हम भक्तों के संग में भक्ति करते हैं तो वो उस पतंग के समान है जिसको स्वयं इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो हवा अपने आप उस पतंग को ऊपर की ओर ले जाएगी. जैसे हम उदाहरण देते हैं, बंबई का जो लोकल ट्रेन है उसकी जो भीड़ है, वो भीड़ आपको बाहर उतार देगी, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको केवल वो भीड़ के बीच में खड़े रहना है. तो वैसे ही जितना हम भक्तों के भीड़ के बीच में रहेंगे, कई बार हमको लगता है अरे क्या ये बुधवार के प्रोग्राम में इतनी भीड़ होती है, ये रविवार में इतनी भीड़ होती है, बैठने की जगह नहीं मिलती, प्लेट नहीं मिलती, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. जितने भक्तों के भीड़ में हम खड़े रहेंगे उतना माया देवी हमको स्पॉट नहीं कर पाएगी. माया देवी भीड़ देख के माया देवी चली जाएगी, अरे भाई ये लोग बहुत ज्यादा तादाद में. और जितना हम अकेला उतना ज्यादा हम टारगेट बनेंगे उनका. तो इसलिए पतंग जो है, पतंग को हम खुद अनुभव करते हैं, वही हमारा सोला माला जब हम अकेले घर पर बैठकर करते हैं तो हिमालय पर्वत के समान लगता है वो. और वही सोला माला जब हम भक्तों के साथ बैठकर करते हैं तो समझ में ही नहीं आता है, भक्तों के साथ बैठकर यहां वहां सबको देखते रहते हैं तो इसका मतलब नहीं कि उस प्रकार से जप करना चाहिए, लेकिन जप में अलग अलग वैरायटी दिखते हैं, कोई किस प्रकार से जप कर रहा है, किसी का डेसिबल लेवल अलग है, किसी का है ही नहीं. कोई अलग, कोई, कई लोग मेलेडी में भी जप करते हैं. एक भक्त बंबई के थे, वो मेलेडी में करते थे. हमने पूछा आपको कितना समय लगता है, एक माला में 15 मिनट लगता है लेकिन मजा आ जाता है. तो अलग अलग ट्यून में वो जप करते थे. अच्छा, तो भक्तों के साथ जो श्रवण कीर्तन है वो किस प्रकार का है? जैसे कि पतंग जब अनुकूल हवाओं के साथ रहती है तो वो कैसे प्रगति करती है। तो ये दूसरी शिक्षा। अब पतंग के अंदर अगर थोड़ा भी छेद हो, होल हो कहीं पर भी, तो पतंग ठीक से ऊपर अपनी उड़ान नहीं भर सकती। सो होल्स, वॉच आउट फॉर होल्स इन योर काइट। क्या है? हमारे अनर्थ, हमारे अनर्थ। चाहे हम कितने भी तीन तीन घंटे का सेमिनार सुन लें, आठ आठ घंटा हमने भजन संध्या में बैठ लिया, गा लिया, 64 माला कर लिए, लेकिन अगर हमारे घड़े के नीचे होल हैं, तो कृपा कितनी भी ऊपर से कोई डालता रहे, नीचे से होल होने के वजह से वो सारी कृपा बहती रहेगी उसी स्पीड में। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ये सारी जो चीजें हैं, ये होल्स के समान है हमारी पतंग के अंदर। और कई बार कलयुग में हो क्या रहा है कि ये छह हैं लेकिन बड़े बड़े होते जा रहे हैं, एक एक होल बड़ा बड़ा, तो पतंग नहीं होल ही होल दिख रहे हैं। कई आपने पतंग देखे होंगे, खाली वो वुडन फ्रेम दिखता है ना, बाकी सब कुछ चिथड़ा हो गया उसका। तो कलयुग में कई बार हमारी स्थिति ऐसी है, खाली वो वुडन फ्रेम दिखता है, वो जो सीख होती है वो दिखती है, बाकी कुछ नहीं है उसका। तो होल्स, अनर्थों को हमको पैचअप करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पतंग को यदि ऊंचा उड़ाना है तो आपका मांझा भी लंबा होना चाहिए। अगर आपका मांझा ही केवल 2 मीटर का है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी पतंग वो इमारत से भी ऊपर जानी चाहिए, भाई मांझा देखो पहले। तो ये जो मांझा है, ये हमारे एंथुजियाज्म, हमारे अंदर जो उत्साह है, उसका प्रतीक है। पतंग है, अनुकूल हवाएं हैं, परंतु यदि उत्साह नहीं है, हम लोग आकर भक्तों के संग में बैठे भी हैं, लेक्चर भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, दर्शन भी हो रहा है, जब भी कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्साह नहीं, न कोई उमंग है, न कोई तरंग है, मेरी आध्यात्मिक जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। कई बार होता है, हम लोग 5-10 साल, 10-15 साल हो गए, वही जब वही लेक्चर, वही सब कुछ, दर्शन, वही फेस्टिवल्स, वही अभिषेक, वही ट्यून्स हरे कृष्णा के, वो सब होने के बाद में हमको लगता है कि कुछ नया नहीं, कुछ नयापन नहीं हो रहा है, कुछ नयापन नहीं हो रहा। तो एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। हम जो भी हमको फेवरेट लगता है, मान लो किसी को हलवा खाना अच्छा लगता है, बटर हलवा है, पसंद है बटर हलवा। अब कितनी बार हमने खाया होगा, कभी बोर हुए? बचपन से लेके कितनी बार हमने वो, यहां पे क्या है, मिसल पाव, शेव भाजी, पता लगा यहां का फेमस है शायद, जो भी है, तो वो कितनी बार खाया होगा, हाँ, कुंड भर भर के। लेकिन अभी भी बोर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए बोर? वही आइटम है, हमको वही टेस्ट चाहिए, लेकिन बोर क्यों नहीं हुए? क्योंकि भूख हर समय नहीं होती है, आइटम वही होता है, हमारी भूख नहीं होती है। आध्यात्मिक जीवन में बोरियत कब आती है? जब हमारी भूख मर जाती है। भगवान के लिए जब भूख मर जाए तो वही हरिनाम चिंतामणि बोरियत लगता है। इसलिए यदि हमें हरिनाम में, श्रवण कीर्तन के अंदर वो टेस्ट बरकरार रखना है, तो हमारे अंदर जो भगवान के प्रति भूख है, वो भूख, उसकी जो अग्नि है, जैसे वो कहते हैं ना जठराग्नि, उसको मंदाग्नि मत होने दो। इसलिए ये जो मांझा है पतंग का, ये किसका प्रतीक है? उत्साह का। जितना लंबा ये मांझा होगा,
उतनी ऊपर ये पतंग उड़ेगी। तो जितना लंबा हमारा उत्साह होगा भगवान को प्राप्त करने का, हमारे भी आध्यात्मिक पतंग उतनी ही ऊंची उड़ेगी। सिंपल इक्वेशन है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा पांचवी, मांझा तो है लंबा, पतंग भी है बिना होल की, अनुकूल हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन अगर आपको आती नहीं पतंग उड़ानी, हाँ, तो होता क्या है कि गलत तरीके से आप मांझे को पकड़ो तो पतंग सर के बल गिरती है ना। पतंग की एक पूंछ भी होती है ना, उसका सर होता है, तो सर के बल जब गिर जाए तो क्या होता है, समझ में आता है, इसको उड़ानी नहीं आती पता। तो उत्साह भी है, लेकिन उत्साह को कैसे कंट्रोल करना है। नहीं तो कई बार जैसे हम उदाहरण देते ना, हम लोग दिवाली के पटाखे की तरह आते हैं एकदम, पड़ 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 आए 2015 में प्रभु जी में आ गया, 16 माला कर शुरू कर दिया, एकादशी निर्जला, रोज मंगल आरती, मंगल आरती से पहले पूरा 16 माला खत्म, पड़ 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 पड़। वो लड़ी होती ना, लड़ी कहीं 200 की लड़ी होती है, कहीं 500 की, कहीं 1000 की, कहीं 10000 की। तो कई बार हम लोग आते हैं इस्कॉन के अंदर, कहीं 500 की लड़ी होती है, पड़ 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 कर चले गए, कहां जाने कहां गए वो भक्त। तो कई भक्त होते हैं 10000 वाली लड़ी होते हैं, अभी तक पड़ 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 चल रहा है, फिर हम लोग देखते रहते हैं तो खत्म होने ही वाला है, पहुंच गया यहां पर। फिर जब पूरी लड़ी खत्म हो जाती है, फिर रास्ते में दिखता क्या है, केवल धुआं और उसके चिथड़े। तो उत्साह अच्छी बात है, परंतु हमको मैच्योरिटी गुरु साधु शास्त्र के आधार पर उस उत्साह को चैनल करना है सही तरीके से। There has to be proper channeling of the enthusiasm। इसलिए 11वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के बताया गया है कि जो मन हमारा है, इस मन को कैसे नियंत्रण में लाओ, जैसे कि एक घुड़सवार घोड़े को कैसे नियंत्रण में लाता है, लगाम को थोड़ा छोड़ता है फिर खींचता है, फिर थोड़ा छोड़ता है। केवल खींच के रखे तो घोड़ा कभी आगे नहीं जाएगा, केवल चिंघाड़ता रहेगा, और पूरा छोड़ दो ले भाई भाग, तू गिरा के भागेगा तुमको। तो जैसे एन जस्ट लाइक एन एक्सपर्ट टेमर ऑफ द हॉर्स, ही नोज हाउ मच टू पुल, हाउ मच टू रिलीज, वैसे ही जो एक्सपर्ट पतंग उड़ाने वाला है उसको भी पता है कि कब उसको पतंग को अपनी ओर खींचना है और कब क्या कहते हैं, ढील छोड़। क्या जानकीनाथ प्रभु इसलिए जानकीनाथ प्रभु बहुत एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कौन से भक्त को कब फोन कर कर खींचना है और कौन से भक्त को थोड़ी ढील देनी है। तो अगर वो आपको ढील दे रहे हैं तो आप इत्मीनान मत रखिए, पतंग को थोड़ा ढील देने के बाद फिर वो ऐसा खींचता है कि वो पतंग को समझ में आता है कि हाँ मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग पतंग की तरह होंगे, हमारे मांझे को हमको किसके हाथ पे देना है, जो प्रगत भक्त हैं उनके हाथों में हमारी बागडोर बोलते हैं ना जिसको, बागडोर देनी। अच्छा सब इतना हो गया, सब कुछ अनुकूल हवाएं हैं, कोई छेद नहीं है हमारी पतंग में, मांझा भी बहुत लंबा है और उड़ा भी हम सही तरीके से रहे हैं, उड़ भी रही हमारी पतंग, होता क्या है, होता क्या है, जब दूसरा वैष्णव देखता है कि इसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है, हाँ, जब भक्ति सिद्धांत और भक्ति वेदांत और भक्ति विनोद के छत के भक्त वो देखते हैं कि इसके छत की पतंग ज्यादा उड़ रही है ऊपर, तो वो कहता है भाई मैं भक्ति सिद्धांत में हूं, जो भक्ति वेदांत के गुरु थे। तीसरा कहता है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मैं भक्ति विनोद बिल्डिंग से हूं, जो दोनों के गुरु थे। तो भक्तों के बीच में जब स्पर्धा चालू होती है, जैसे मकर संक्रांति में हम देखते ना पतंग, आप तो अपना इत्मीनान से उड़ा रहे हो, फिर दूसरे छत का जो अपना पतंग लाता है काटने के लिए, है ना, काटने के लिए लाता है वो। तो वो काटता कैसे, वो अपने मांझे से आपके मांझे को घर्षण करके काटेगा, ऐसे पतंग काटी जाती। तो यदि हमारा मांझा हमारा उत्साह है तो जो दूसरा है वो अपने उत्साह से हमारा उत्साह कम करने की कोशिश करता है। खैर यहां पर हम एक भौतिकतावादी की बात कर रहे हैं, भक्तों की नहीं, कि कई बार हमारा जो उत्साह है भक्ति में कम क्यों होता है। हाँ, दूसरे भक्तों का उत्साह देखकर तो बढ़ता है, परंतु बाहर वालों का उत्साह जब हम देखते हैं कि वो लोग इंद्रिय भोग में इतने उत्साही हैं, तो हमको कई बार डाउट आता है कि मैं गलत क्लब को तो नहीं ज्वाइन कर लिया। इसलिए आप बाहर देखो लोग कितने उत्साह से इंद्रिय भोग में लगे हैं, 31st नाचो, 31st नया साल शुरू हो रहा है, और कैसे ये व्हाट्सएप मैसेज हैप्पी न्यू ईयर के, ये सब पटाखे अलग अलग प्रकार से अपना उत्साह दिखा रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में जो उनका उत्साह दिखा रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं ये लोग इतना एंथुजियास्टिक है, और हम लोग फिर पढ़ते हैं दुखालय, दुखालय है कि नहीं, कि फिर भगवत गीता के पेज पलटते रहते हैं, कहीं और तो कुछ गीता में भगवान ने आगे क्लैरिफाई तो नहीं किया है। तो क्यों वो लोग इतने पीड़ित अवस्था में भी इतने एंथुजियास्टिक हैं इंद्रिय भोग में। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक छोटी लड़की जब पहली दफा उसके कान और नाक, क्या कहते हैं उसको, पियर्सिंग, हाँ कर्ण भेद और नासिका भेद, छोटी लड़की, बहुत पेनफुल होता है वो, लेकिन उसको वो दर्द उसका सहन हो उसके लिए उसको क्या करते हैं, उसके सामने जो गहने अभी उसमें लगेंगे वो पहले रख देते। ये देखिए ये सब यहां पे होल करने के बाद ये गहने यहां पे सजेंगे तेरे ऊपर, तो जब वो उस गहने को देखती है तो इसको सहन कर लेती है, अगर वो गहने निकाल दो तो इट इज ओनली मिजरी। सो दिस इज व्हाट मटेरियलिस्टिक लाइफ इज, कि बॉस गाली दे रहा है, पूरी कंपनी गाली दे रही है, लगा रही है, गधे की तरह काम करा रही है, लेकिन पे पैकेज, वो गहने के सामान दिखा देती है, फैसिलिटीज दिखा देती है, एसी ऑफिस दिखा देती है, ये वो सब कुछ, तो वो देखने का, हाँ भाई कर, कितना बड़ा होल करना है, कर ले इधर सब जगह कर ले। तो माया देवी वो गहने दिखा दिखा के होल किए जा रही है, किए जा रही। जैसे वो साइंटिस्ट ने वो एक एक्सपेरिमेंट किया था चूहे के ऊपर, पिंजड़े के अंदर एक तरफ उसने पूड़ी रखी, यार पूड़ी पुराना एग्जाम्पल हो गया, केक रखा एक तरफ, एक तरफ केक रखा और दूसरी तरफ उसने एक चूहिया रखी। ये चूहा था पिंजड़े का, एक तरफ चूहिया एक तरफ केक। तो ये बच्चों को वो दिखा रहा था कि क्या साइकी क्या होता है किसी भी चूहे का। तो उसको छोड़ा तो सीधा केक के पास गया, खाया। फिर उसने केक बदल कर उसने वहां पर चीज रखा, वापस से वो चीज की ओर भागा। फिर उसने पूड़ी रखी, वापस से पूड़ी की ओर भागा। एक बार भी वो चूहिया की ओर नहीं गया। तो इसने फिर सब बच्चों को कहा, दिस प्रूव्स दैट हंगर इज मोर पावरफुल देन एनी अदर टेम्पटेशन। तो एक विद्यार्थी ने कहा, सर वो चूहिया बदल के भी देखो ना। आपने इधर केक बदल दिया, पूड़ी बदल दी, चीज बदल दी, हो सकता है वो उसकी बीवी हो। तो इस संसार में जो जो लोगों के पास टेम्पटेशंस हैं, वैरायटी बनाकर रखे हुए हैं, हमें उससे भ्रमित नहीं होना है। द सो कॉल्ड प्रोग्रेस, आई विल फिनिश विद दिस, द सो कॉल्ड प्रोग्रेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड और एंथुजियाज्म इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, हिंदी में बोलना अच्छा रहेगा, तथा कथित प्रगति इस भौतिक संसार की किस प्रकार की है? जैसे कि एक कसाई खाने में बकरा जो है घास खाते खाते बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहां बढ़ते जा रहा है? कसाई की ओर। लग रहा है ना कितना प्रगति कर रहा है बकरा, कितना घास मिला है। देखो अब वो पहले ना 10वें नंबर पे था, अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है। बकरा 10वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया है और दूसरे नंबर पर घास ज्यादा मिल रहा है, उसको ज्यादा हरा घास मिल रहा है। देखो कितनी प्रगति हो गई। बस एक और नंबर बाद नंबर उसका कहां आने वाला है? कसाई का जो हथियार है उसके नीचे। सो देयरफॉर डोंट गेट कैरिड अवे बाय द एंथुजियाज्म ऑफ सेंस ग्रेटिफायर्स आउटसाइड। फोकस ऑन योर काइट, ऑन योर थ्रेड, फेवरेबल विंड्स, कीप प्रॉपर कंट्रोल एंड योर काइट विल कीप फ्लाइंग हाई, हायर एंड हायर एंड हायर। नहीं तो अगर आपने अलाउ किया दूसरे मांझे को, आपके मांझे को काटने के लिए, तो फिर होगा क्या कि हम देखते हैं कि भक्त भक्ति में आते हैं, फिर बाहर से प्रभावित होकर भक्तों का संग छोड़ देते हैं और फिर वो बन क्या जाते हैं? कटी पतंग, है ना? लगता है ना कुछ समय के लिए कोई बंदिश नहीं है। कटी पतंग जब तक नीचे उसको लुटेरे लूट नहीं लेते, जहां से वो कटी है और अब तक लूटी नहीं गई है वो पतंग, उसके बीच में कितना फ्री फ्लाइट उसका दिखता है ना। कोई बंधन नहीं, कोई बंदिश नहीं, एकदम फ्लोटिंग। तो वो जो समय होता है ना जब भक्तों के संग को हम छोड़ देते हैं और माया के लुटेरे के द्वारा लूटे नहीं गए हैं, उसके बीच का जो समय होता है, हमको लगता है कितना फ्री हूं मैं अभी, कोई सोला माला नहीं, कोई चार नियम नहीं, कांदा भजी खा सकता हूं। कब तक खाएंगे कांदा भजी? जब तक कि वो पतंग लुटेरों के हाथ में आकर करते क्या है फिर, वो जो पकड़ लेते हैं चीर फाड़। तो इसलिए गोवर्धन हमको क्या सिखा रहे हैं? गोवर्धन गोलोक वृंदावन में जब प्रकट हुए तो एक बूंद पानी और अग्नि की चिंगारी का मिश्रण, कंकर से एक पत्थर, पत्थर से पर्वत, वृद्धि। गोवर्धन का अर्थ है वृद्धि। गोवर्धन मीन्स अ प्रोग्रेसिव डिवोटी। So we learn from the example of the kite, and here are the lessons from the kite what we can learn. Agli baar jab bhi hum ek patang ko udte hue dekhen ya udaye patang ko, to hame dhyan mein rehna chahiye ki meri bhakti ki patang kis disha mein ud rahi hai, ya ud rahi ki nahi, ya katne jane wali hai. To ye sare mudde dhyan mein rahenge to avashya hi hamari adhyatmik pragati, जो कि गोवर्धन हमें लेसन दे रहे हैं, वृद्धि के पथ पर चलती रहेगी। एंड यस, वी विल ऑल्सो बिकम अ बोनाफाइड हरिदास। गोवर्धन इज हरिदास वर्य, विल बिकम अ बोनाफाइड हरिज सर्वेंट। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका? Announcement.
His grace.